चले शहर की ओ, जब चले शहर की ओ, जब चले शहर की ओ, जब चले शहर की ओ।
नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जोशी आपकी दोस्त हाजिर हूँ एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है जब चले शहर की ओर। अरे आज ये नरेन कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था।
हेलो अंजलि।
नरेन कहाँ रह गए थे तुम? टाइम देखा है घड़ी में?
सिर्फ 2 मिनट लेट हूँ अंजलि, वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी।
सच कह रहे हो?
क्या अंजलि, तुम लड़कियाँ भी ना हर बात पर शक करती हो।
और तुम लड़के ही सबसे ज्यादा गलतियाँ करते हो और फिर उम्मीद करते हो कि हर कोई तुम पर विश्वास करे। अक्सर ऐसा ही होता है, पत्नी हमेशा से पति पर विश्वास करती आई है और पति हमेशा उसके विश्वास को तोड़ देता है।
अंजलि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो बस 2 मिनट ही प्रोग्राम के लिए लेट हुआ और उसका सही कारण भी मैंने तुम्हें बता दिया, वही इसमें पति पत्नी के विश्वास की बात कहाँ से आ गई?
ओफो, मैं तो उन मर्दों की बात कर रही हूँ नरेन, जो गांव में रहने वाली अपनी बीवी का विश्वास तोड़ देते हैं।
मतलब?
मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्या शहर में आने के बाद पति का पत्नी के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखना कठिन हो जाता है?
अंजलि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। एक काम करते हैं, इस बारे में अपने प्रवासी दोस्तों से ही पूछ लेते हैं।
ठीक है,
लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रम जब चले शहर की ओर इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
वैसे नरेन कहीं ना कहीं हमारे धारावाहिक में चंदर ठीक नहीं कर रहा, वो उसका कल्पना के लिए साड़ी लाना, बार बार उसके घर जाना।
खैर इस बात का भी पता चल ही जाएगा कि आखिर चंदर के दिल में चल क्या रहा है।
तो आइए आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 33वीं कड़ी।
दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने सुना, चंदर मधु को फोन करता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि मधु ने गांव में काम करना शुरू कर दिया है। चंदर मधु को काम करने के लिए मना कर देता है। उधर हरिंदर ड्राइवर की नौकरी के लिए ऋषिकेश चला जाता है। उधर गांव में मधु खुश है कि उसने 1 महीने में पूरे 30 बोतल जूस बनाया। चंदर कल्पना से मिलने उसके घर जाता है और उसे साड़ी गिफ्ट करता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
अरे छोटू, ये बस आखिरी ऑर्डर रह गया है, इसे वो जो कस्टमर बैठा है ना उनकी टेबल पर लगा दे।
जी चंदर भैया।
अरे छोटे।
जी नारायण भैया।
इसके बाद बाहर ये क्लोज का बोर्ड लगा दे।
जी भैया।
11 बज गए, आज बहुत काम कर लिया। मालिकों का बस चले तो वाकई खून चूस ले नौकरों का।
अरे क्या हुआ नारायण भाई, आज कुछ ज्यादा काम कर लिया तो है? अरे मालिक पैसा भी तो टाइम पर देता है और ऊपर से टिप भी अच्छी मिलती है यार।
ये लो आ गया एक और मालिक का हिमायत करने वाला, मालिक का चमचा।
यार नारायण तू।
अरे रहने दे गज्जू, क्यों इस बेचारे को छेड़ता रहता है?
नहीं नहीं चंदू, बोलने दे इसे भी कहने दे। और सुन गज्जू, ये जो टिप मिलती है ना, वो कस्टमर हमारे काम से खुश होकर अपनी मर्जी से देता है, मालिक कोई अपनी जेब से नहीं देता। अरे ये दुनिया सब पैसों पर ही टिकी हुई है, पैसा नहीं तो कोई किसी का नहीं।
अरे नहीं यार नारायण, ऐसी बात नहीं है, तू आज ये ऐसी रुकी रुकी बातें क्यों कर रहा है यार? अच्छा एक बात बता, हम तेरे दोस्त क्या सिर्फ पैसे के कारण बने हैं? और फिर तेरी बीवी भी तो यार।
उसकी बात मत छेड़ गजेंद्र, जले पर नमक लग जाता है। जब गाँव से शहर आया था तो बीवी ने साफ कह दिया था, या तो हर महीने 2000 रुपए भेजता रहूं, नहीं तो भूल जाना गांव में तुम्हारी कोई बीवी भी है।
क्या मतलब?
अरे मतलब साफ है, कोई ना कोई तो होगा जिसके बलबूते पर मुझे जूता मारा है। और सुन गज्जू, तू भी जरा नजर तेज रख, तू तो 7 महीने से घर भी नहीं गया।
नहीं यार नारायण, नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है भाई, उसकी बहुत याद आती है मुझे, कभी कभी तो मैं अकेले में रो लेता हूँ यार, और शायद वो भी मुझे याद करके चुपचाप सबसे छुपकर अकेले में रोती होगी यार।
अरे सब ख्वाब है गज्जू, हम यहाँ शहर में गालियाँ सुनते हैं और वहाँ गांव में ही नए नए इंतजाम हो जाते हैं पैसा कमाने के, समझ रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूँ?
यार तू क्या बातें कर रहा है नारायण, किसी की बीवी सिर्फ पैसों के लिए ही थोड़ी ना उसे छोड़ देगी।
अरे चंदू तुझे नहीं पता ऐसा ही होता है।
नारायण आज तो कुछ परेशान लग रहा है यार, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा चल छोड़, कुछ और बात करते हैं यार।
ठीक है मत मानो, जब खुद ठोकर खाओगे तब याद करोगे इस नारायण को।
यार गज्जू ने तुझसे कहा ना, तेरी समझ में नहीं आता क्या, बस कुछ महीने फोन ना करने से या पैसे नहीं भेजने से 7 जन्मों का बंधन नहीं टूटता।
7 जन्मों का बंधन।
गज्जू चल यहाँ से।
तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है यार?
गजेंद्र तू चल रहा है या नहीं?
अरे यार चल रहा हूँ, लेकिन बात क्या होगी ये तो बता।
एक काम कर, तू यहाँ रह इसी के साथ, मैं जा रहा हूँ समझा।
चंदर अरे सुन तो यार, चंदर ये चंदर।
7 जन्मों का बंधन।
क्या यार नारायण तू भी ना यार।
कल्पना, कल्पना।
कौन है? अरे भाई आ रही हूँ।
कल्पना दरवाजा खोलो, मैं चंदर।
चंदर? क्या हुआ चंदर, तुम इतनी रात गए? कहीं आज फिर मालिक से झगड़ा तो नहीं कर लिया?
नहीं कल्पना, ये बात नहीं है।
अरे तुम तो रोने लगे, चलो अंदर आओ। बात क्या हो गई?
कल्पना मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ।
क्या हो गया चंदर, कुछ बताओ भी।
कल्पना मधु को अब मेरी कोई जरूरत नहीं है।
ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मधु को अब ना ही मेरी जरूरत है और ना ही मेरे पैसों की। वो कहती है कि पैसों का इंतजाम खुद कर लेगी।
तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है चंदर?
नहीं कल्पना, मुझे तो लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है।
चंदर तुम गलत सोच रहे हो।
नहीं कल्पना, मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता जिसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ना हो।
लेकिन
कल्पना तुम तो मुझे समझती हो।
चंदर
तुम ही तो थी जिसने मुझे अजनबी कोई संजान शहर में सहारा दिया।
चंदर मेरा हाथ।
वो तुम ही थी कल्पना जिसने अच्छे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया।
चंदर मेरा हाथ छोड़ो।
कल्पना मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्ची के लिए।
चंदर मेरा हाथ छोड़ो।
मैं तुम और गुड़िया तीनों एक साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह।
चंदर निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से।
कल्पना
मैंने कहा ना, इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से।
कल्पना तुम मुझे गलत समझ रही हो।
ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे, और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ? छी चंदर, मैंने तुम्हें घर में जगह इसलिए दी थी क्योंकि तुम मेरे पति के गांव से हो। मैंने तुम्हें अपना दोस्त इसलिए समझा क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम्हारा वो बार बार मेरे घर पर आना, मेरी बेटी के लिए प्यार दिखाना, मेरी मदद करना, वो सब कुछ, मैं भी कितनी बेवकूफ थी।
नहीं कल्पना।
चंदर तुम जाओ यहाँ से और अब कभी दोबारा लौट कर यहाँ मत आना।
कल्पना कल्पना मुझे यहाँ आने के लिए मना मत करो, भगवान के लिए मुझे यहाँ आने के लिए मना मत करो।
ठीक है तुम यहाँ आ सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी मधु के साथ।
कल्पना
लो बाजी, गरम गरम चाय पियो।
अरे सुषमा इसकी क्या जरूरत थी?
अरे जरूरत क्यों नहीं थी मीरा बाजी, अब मधु बाजी तो कभी कभी फोन के बहाने आ भी जाती हैं, लेकिन आप, अच्छा हुआ जो हरेंद्र बैजी भी शहर चले गए।
वो क्यों?
अब हरेंद्र बैजी के फोन आएंगे तो आप भी आती जाती रहा करेंगी।
अच्छा सुषमा, वो तुम्हारी कविता दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही?
अरे बौजी वो तो परसों ही मुंबई चली गई, और अगले हफ्ते पिताजी भी जा रहे हैं दीदी के पास।
वो क्यों?
मुंबई में दीदी ने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है।
कविता ने अपने लिए खुद ही लड़का पसंद कर लिया?
हाँ, और पिताजी उसी को देखने मुंबई जा रहे हैं। अगर पसंद आ गया तो फिर दीदी की शादी।
ये तो बड़ी अच्छी बात है।
मधु बाजी आपको कुछ काम था क्या कविता दीदी से?
नहीं नहीं, मुझे तो बस वो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी, पर कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पता कर लूंगी। लगता है मधु उनका फोन आ गया, मैं सुनती हूँ जरा। अरे दीदी संभल कर। हेलो जी।
हेलो मीरा,
कैसे हो आप, ठीक तो हो?
हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और सुनो बच्चे कैसे हैं?
बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बस आपको बहुत याद करते हैं।
सिर्फ बच्चे ही याद करते हैं, तू याद नहीं करती?
आप भी ना, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है।
मीरा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है।
अच्छा सुनिए, आपकी नौकरी कैसी चल रही है?
ठीक चल रही है, मालिक नौकरी के कागज देने में आनाकानी कर रहा था।
क्यों?
तू चिंता मत कर, वो बाद में मान गया, अब जल्दी ही सब कागज दे देगा।
देखिए कोई भी गलत काम मत करना।
अरे नहीं करूँगा।
और दवाइयाँ तो बराबर खा रहे हो ना?
हाँ बराबर ले रहा हूँ।
और हाँ अब फिर से पीना शुरू मत कर देना।
नहीं पीऊँगा मीरा।
यार दोस्त कहे तब भी नहीं।
तेरी कसम उस चेहर को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अच्छा सुन, मैं सोच रहा हूँ कि पहली तनख्वाह मिलते ही एक मोबाइल खरीद लूँ। मुझे तेरा यूँ घर से दूर आकर फोन सुनना अच्छा नहीं लगता, घर में फोन होगा तो माँ और बच्चों से भी बात हो जाएगी।
जैसा आप ठीक समझे।
और तुझे पता है अब मुझे अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी।
वो क्यों?
अरे भाई यहाँ पर बड़े बड़े अंग्रेज लोग आते हैं जिन्हें मुझे घुमाना होता है, अब थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो मुझे भी आनी चाहिए ना।
ये बात तो है।
अच्छा तुझे एक और मजेदार बात बताऊँ?
बोलिए।
यहाँ जो अंग्रेज आते हैं ना, उनके साथ गोरी गोरी मेम भी आती हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बिल्कुल मलाई की तरह सफेद।
अच्छा तो इसलिए अंग्रेजी सीख रहे हैं आप? देखिए कह देती हूँ, किसी मेम के चक्कर में ना पड़ना वरना जान दे दूंगी।
अरे तू तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था, अब भला तीन बच्चों के बाप को कोई गोरी मेम थोड़ी ना पसंद करेगी। अरे अपनी मेम तो तू है, बस तू।
देखिए आगे से ऐसा मजाक मत कीजिएगा, मुझे बहुत डर लगता है।
अच्छा बाबा, नहीं करूँगा। चल अब फोन रखता हूँ। अपना और बच्चों का ख्याल रखना और माँ को मेरा प्रणाम बोलना।
आप भी अपना ख्याल रखना।
ठीक है।
और हाँ, जल्दी आना।
जैसे ही छुट्टी मिलेगी फौरन चलाऊंगा। चल अब रखता हूँ।
अच्छा। अरे सुषमा, मधु कहाँ चली गई?
पता नहीं बौजी, अचानक उठकर चली गई।
शायद उसे चंदर की याद आ गई होगी। अच्छा, मैं भी चलती हूँ।
जी बौजी।
तो नरेन, अब हम आते हैं वापस अपने उसी सवाल पर कि क्या शहर जाकर पति के लिए अपनी पत्नी के प्रति विश्वास को बनाए रखना इतना कठिन हो जाता है कि वो उसे तोड़ देता है?
अगर हाँ तो क्यों?
और अगर नहीं तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं?
आइए जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस बारे में।
मैं इस बात को मानता हूँ कि कई लोग हैं जो 25-25, 20-20 साल तक जापान, इंग्लैंड और वहाँ के होटलों में कार्यरत हैं। वो अपने पत्नी के प्रति बहुत वफादार हैं, ऐसा नहीं है। वो उन्हें कई मौके भी मिले होंगे लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी पत्नी को नाराज नहीं किया होगा, क्योंकि उसके पीछे कई वो हैं। साल में 3-4 व्रत लेना, अपने पति के प्रति वफादारी रखना, वो भी इस अगर पत्नी वफादारी कर रही है तो लिया जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल माना जा सकता है कि एक पति अपने के प्रति वफादारी जरूर करेगा।
सर्वप्रथम तो यह निर्भर करता है कि आदमी का नेचर किस प्रकार है, आदमी की प्रकृति किस प्रकार की है। अगर कोई चाहे तो वह वफादार रह भी सकता है और नहीं भी। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी सेक्सुअल इच्छा को जो है कंट्रोल कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। वो इस तरह की गतिविधियों के प्रति आकर्षित होते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। मेरा सोचना तो यह है कि आदमी को किसी भी प्रकार का वातावरण मिले उसे वफादार ही रहना चाहिए, अन्यथा उसे आगे भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
कई लोग होते हैं जो वफादार भी होते हैं, कई लोग होते हैं जो वफादारी नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि कई तो बुरी संगति में फंस जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में रहकर भी ऐसे माहौलों में घुल मिल जाते हैं जो अपनी पत्नी के प्रति वफादारी नहीं निभा पाते और भटक भी जाते हैं। कई लोगों को ऐसा माहौल मिल जाता है, अपने पर विश्वास अटल रखते हैं, जो अपनी पत्नी के प्रति वफादारी पूरी तरह से निभा पाते हैं।
कुछ कैरेक्टर के ऊपर होते हैं, कुछ हालात होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं कि इंसान किस परिस्थिति में गुजर रही है। जैसे भी कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छा भी है वो भी माहौल के हिसाब से डल के कभी गलत कदम उठा देते हैं, तो ऐसे ये होता है। बाकी कोशिश यही कि आप हैं, मैं हैं, तो हम वफादार सब हैं, पर वक्त का क्या पता।
ए भाई दर देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रवासी श्रोताओं के विचार, जिन्हें जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने,
और जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, कॉरेस्पोंडेंस यानी के पत्राचार शिक्षा प्राप्त करने का वो तरीका है जिसके जरिए आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, फिर चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो।
क्या पहाड़ों में भी?
हाँ, पहाड़ों में भी। और हाँ, पहाड़ों से याद आया, आज हम अपने श्रोताओं को एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो चंबा जैसी पहाड़ी इलाके में रहती हैं और जिन्होंने कॉरेस्पोंडेंस यानी के घर पर रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ प्रीति देवलियाल और आज हम बात करेंगे श्रीमती शकुंतला परमार जी से। नमस्कार शकुंतला जी।
नमस्कार जी।
तो शकुंतला जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है?
जी, मेरी शिक्षा तो पहले मतलब रेगुलर 8वीं तक हुई थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं आंगनबाड़ी में आई। आंगनबाड़ी में आने के बाद मैंने हाई स्कूल प्राइवेट किया। जब मैंने प्राइवेट हाई स्कूल किया उसके बाद मैं फिर मतलब आंगनबाड़ी में ही हूँ।
तो इसका क्या कारण है कि आपने प्राइवेट शिक्षा ग्रहण की?
इसका ये कारण है कि मैं आंगनबाड़ी में भी थी और आगे मतलब मेरी इतनी मेरी शिक्षा नहीं थी, इसलिए मैंने प्राइवेट हाई स्कूल की। कि पहले मतलब लड़कियों के इतना पढ़ाते लिखाते नहीं थे, तो 8वीं पास करवाया था मैंने। मतलब मेरे मन में उत्साह हुआ कि जैसे लोग पढ़े लिखे हैं तो मैं भी हाई स्कूल कर लेती, इसीलिए मैंने बाद में प्राइवेट पढ़ाई की।
तो शकुंतला जी, जैसे आपने हमें बताया कि आपने शादी के बाद 10वीं पास किया, वो भी प्राइवेट, और आपके उस समय बच्चे भी हो रखे थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ?
जी, पहले पहले तो थोड़ा झिझक हुई, लेकिन बाद में जब मैं स्कूल गई, मैं सबने कहा पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। पहले पहले तो मतलब थोड़ा झिझक लगी, लेकिन जब मैं पेपर देने चली गई और पेपर दे रही थी तो मतलब मुझे अच्छा महसूस हुआ कि मैं भले एक गृहिणी हूँ लेकिन मतलब पढ़ाई कर रही हूँ गृहिणी के साथ साथ, तो मुझे अच्छा लगा।
तो शकुंतला जी, आप अंत में हमारे श्रोता दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं अंत में सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि मतलब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, और जैसे हमें आगे बढ़ना हो तो मतलब हमें पढ़ाई जरूरी करनी चाहिए। और परिवार वालों से मेरा यही निवेदन है, सबसे मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, चाहे वो बहू हो या बेटी हो। बहू अगर कम पढ़ी लिखी है तो सभी मतलब सास को यही करना चाहिए कि बेटी अगर तू पढ़ना चाहती है तो उसे प्राइवेट पढ़ाए, या फिर उसको अगर स्कूल भेज सकते हैं तो जरूरी पढ़ानी चाहिए।
पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना।
अंजलि, तुम्हें क्या लगता है, क्या शहर में रहने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है?
नरेन, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि शहर में रहने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, शहर के माहौल को अपनाने के लिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी का आना कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि शहरी परिवेश में अंग्रेजी भाषा समाज का हिस्सा जो बन गई है।
हाँ, वो तो है,
और इसे समय की मांग भी कह सकते हैं।
लेकिन अंजलि, हमारे ऐसे बहुत सारे प्रवासी दोस्त हैं जो गांव से शहर आते हैं और गांव में शिक्षा का अभाव होने के कारण अंग्रेजी नहीं सीख पाते, क्या इसके लिए तुम कुछ बता सकती हो?
नरेन, एक और शख्स है जो मुझसे बेहतर इस बारे में बता सकते हैं।
और वो कौन है?
अरे भूल गए, भैजी।
तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
हेलो भैजी, हाउ आर यू?
अरे अंजलि, आज अंग्रेजी में?
भैजी, बात ये है कि आज आपसे की जाने वाली बातचीत का विषय अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है।
ओहो, ये बात है
जी। भैजी, आजकल शहर में हर कोई अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि लोग हिंग्लिश में यानी कि हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर भी बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी है कि हमारे प्रवासी दोस्तों को भी अंग्रेजी आनी चाहिए?
देखो अंजलि, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। चाहे हम कितनी भी अंग्रेजी सीख लें, हिंदी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अब रही बात अंग्रेजी की, तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखा जा रहा है कि लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल दिन पर दिन ज्यादा कर रहे हैं। अंग्रेजी के कई सारे शब्द ऐसे हैं जो लोग अपने डेली रूटीन यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से होता क्या है कि जो लोग गांवों से शहर की ओर आते हैं, उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है शहर के परिवेश में ढलने की, और कहीं ना कहीं अंग्रेजी भी शहरी परिवेश का एक हिस्सा बन चुकी है, ये तो आप लोग मानते हैं।
जी भैजी।
इसलिए शहर में आने वाले लोगों को दूसरे लोगों के साथ काम करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो जरूर सीखनी होगी, बोलने के लिए भी और समझने के लिए भी।
लेकिन भैजी, क्या गांव से आए लोगों के लिए शहर में अंग्रेजी सीखना आसान होगा?
अगर ये आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि अंग्रेजी अकेली ऐसी भाषा है जिसमें मात्राओं का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये और भी आसान हो जाती है। और वैसे भी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थाएं हैं जो अंग्रेजी भाषा सिखाती हैं।
मतलब इन संस्थानों की मदद से हमारे प्रवासी दोस्त अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा अंजलि तुमने, अंग्रेजी भाषा है ही इतनी आसान, और कुछ तो मैं यहाँ बैठे बैठे सिखा सकता हूँ।
जैसे?
अब सुनो, गौर से सुनो। जैसे नमस्ते कहने के कई अलग अलग तरीके हैं, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। मगर हाँ, गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल सिर्फ सुबह कीजिए, गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल दोपहर को, और शुभ रात्रि के लिए कहिए गुड नाइट।
जी भैजी।
और अगर किसी बात से आप सहमत हो तो कहिए यस, और सहमत नहीं हो तो कहिए नो, और शुक्रिया कहने के लिए कहिए थैंक यू, और अगर शुक्रिया का कोई जवाब दे यानी कि थैंक यू का कोई जवाब दे तो आप कह सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम, नो मेंशन, आदि आदि।
लेकिन भैजी, अंग्रेजी के कुछ शब्दों के उच्चारण में मुझे बहुत गड़बड़ नजर आती है।
ओहो, वो कैसे अंजलि?
अब देखिए ना, बी यू टी बट होता है, सी यू टी कट होता है, तो पी यू टी पट क्यों नहीं होता?
बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मुझको याद आ रही है हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के डायलॉग की, वो कहते हैं इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। भाई ये तो सही है, अब हमारी हिंदी के व्याकरण की तुलना अंग्रेजी के ग्रामर से थोड़ी ही की जा सकती है।
सही कहा भैजी आपने।
तो दोस्तों, सुना आपने, अंग्रेजी सीखना मुश्किल नहीं, इसे कोई भी सीख सकता है।
सेनेटर कॉलेज मा सेनेटर तेरो गल है बेजना कांस के ते इनेटर कॉलेज मा सेनेटर तेरो गल है बेजना
कांस के ते इनेटर कॉलेज मा सेनेटर तेरो गल है
और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी काम की बात की तरफ।
काम की बात।
नरेन, तुमने देखा होगा कि हम जब कभी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो वहाँ वेटर्स को खाने के बाद अक्सर टिप देते हैं।
न सिर्फ देखा है बल्कि मैं टिप देता भी हूँ।
तो तुम यकीनन जानते भी होंगे कि टिप देने की वजह क्या होती है।
अंजलि, मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, पर अगर मुझे होटल में वेटर अच्छी सर्विस देता है तो मैं उसके काम से खुश होकर उसे टिप देता हूँ।
बिल्कुल सही नरेन, टिप वेटर के लिए वो इनाम होता है जो उसे ग्राहक को अच्छी सुविधाएं देने के लिए मिलता है। मगर नरेन, जरूरी नहीं है कि अच्छी सर्विस के पीछे केवल वेटर का ही हाथ हो। कुक और हेल्पर भी अच्छी सर्विस के कारण हो सकते हैं, पर उन्हें कभी टिप नहीं मिल पाती। और अगर सभी वेटर्स टिप में मिलने वाले पैसों को अपने पास रखने लगे तो किसी वेटर को ढेर सारी टिप मिल जाएगी और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए तो कुछ रेस्टोरेंट्स में कैश काउंटर पर एक जार रख दिया जाता है जिसमें ग्राहक अपनी इच्छा से कुछ पैसे डाल देते हैं, या फिर पूरे स्टाफ को ये निर्देश होता है कि किसी एक जार में वो अपने सारे टिप को डालते रहें।
और बाद में इकट्ठा की हुई राशि को कुक, वेटर्स और साफ सफाई करने वाले लोगों में बराबर बांट दिया जाता है। और नरेन, तुम्हें पता है कि छोटे स्थानों पर टिप की राशि सुविधा पर निर्भर करती है। वेटर ग्राहक को जैसी सुविधा प्रदान करता है, ग्राहक उससे खुश होकर वैसी ही टिप देता है।
तो दोस्तों, ये तो थी टिप की बात। अरे भाई, मेरा मतलब है काम की बात। लेकिन अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल तुरंत हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
नंबर है 9197176782 23। सचमुच दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और वो पल आ गया जिसका आपको ही नहीं हमें भी बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, आपकी चिट्ठी का। और इस वक्त मेरे हाथ में वो खास चिट्ठी है जिसे हमने चुना है आज के प्रोग्राम के विजेता के रूप में। नरेन, हमारे आज के विजेता हैं जिला बागेश्वर उत्तराखंड के भास्कर लोहनी जी। नरेन, इन्होंने अपनी चिट्ठी की शुरुआत हमारे कार्यक्रम की तारीफ और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ की है। ये कहते हैं कि बात 1994 की है जब मैं 12वीं पास करके नौकरी के लिए दिल्ली आया। मेरे गांव के दो लड़के दिल्ली से घर आए थे। इन्होंने मुझे दिल्ली चलने के लिए कहा। माँ से झगड़ा करके मैं दिल्ली नौकरी के लिए आ गया। दिल्ली में एक कोरियर सर्विस में मैं काम करने लगा। समय बीतता गया। 8 महीने के बाद मैं घर जा रहा था। मेरे पास 5,000 रुपए थे। माँ के लिए साड़ी व अन्य सामान मैंने एक अटैची में रख दिया। बस अड्डे से बागेश्वर की बस में बैठ गया और टिकट भी कटा लिया। इतने में एक भाई कुमाऊनी भाषा में बोला, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मेरे सामान का ख्याल कर लेना। इतने में मुझे भी बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैंने उस पर विश्वास जताया और बाथरूम के लिए चला गया। 10 मिनट के बाद बस जाने वाली थी। जैसे ही मैं वापिस आया तो वो आदमी और मेरी अटैची दोनों गायब थे। मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपए ही थे, लेकिन मैंने टिकट कटा लिया था। मैंने काफी खोजबीन की, कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत मायूस हो गया और रोने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ कोई लूट के ले गया हो। जब मैं रो रहा था उस समय मुझे अपनी माँ के वो आंसू याद आने लगे जिस दिन मैं अपनी माँ की बात को ठुकरा कर दिल्ली आया था। खैर, मुश्किल हालात में घर पहुँचा। मेरे दिमाग में तो यही था कि माँ मुझे डांटेगी या और कुछ कहेगी, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँचा माँ ने मुझे गले लगा लिया। उसके बाद मैंने माँ को ये कहानी सुनाई तो माँ फिर से रोने लगी और कहा, बेटा तू ठीक ठाक घर आ गया है, यही काफी है। इसके बाद ये आगे लिखते हैं कि इसके बाद मैंने BA किया। आज मैं दिल्ली में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ और एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा हूँ। इस घटना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मूल रूप से यही कि जो मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, माँ बाप चाहे पढ़े लिखे हों या नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचते और जो उनके आज्ञानुसार चलता है वो हमेशा सुख शांति से भरा जीवन व्यतीत करता है।
बिल्कुल ठीक लिखा भास्कर जी आपने। फिलहाल भास्कर जी आपकी चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों भास्कर जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए। आप हमें अपनी चिट्ठियां इस पते पर भेज सकते हैं। पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोक एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003। अंजलि तुम्हें पता है पुराने जमाने में लोग कबूतरों के जरिए संदेश भेजा करते थे, बाद में पोस्ट ऑफिस आए और लोगों के संदेश डाक के जरिए जाने लगे और अब तो मोबाइल आ चुके हैं।
लेकिन अभी एक और चीज ऐसी है नरेन जिसके जरिए लोग अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं।
वो क्या?
अरे भाई अपना प्रोग्राम जब चले शहर की ओर, जिसके जरिए हमारे प्रवासी दोस्त अपने परिवार वालों दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने संदेश भेजते हैं।
अरे हाँ तो आइए दोस्तों सुनवाते हैं आपको आज के संदेश।
मेरा नाम सुरजा देवी ग्राम कोरीगार पट्टी उदयकोट। मैं अपना छोटा नाक देना चाहूँ वो एक नो मई स्नेगी मन में मैं वे देना चाहूँ कि वे की आजकल वे को न खर्चा पानी आई न वे का फोन होना। मैं 2-3 महीने से परेशान और जब मेरी तबीयत कभी खराब रही तो जब वो फोन ही नहीं आना तो मैं वे बतौनी कखन छ मेरी बात पर जरूर तो ध्यान देना पड़ लू। जब तक तेरे ब्यो भंतर कुछ नहीं हुई तब तक ही तुम मेरी बात सुननी, वहाँ के बाद बेटा तुम मेरी बात नहीं सुननी। बेटा अगर असली बेटा तुम मेरू है लो तो मेरी बात पर ध्यान दे लू, यदि न्यू है लो तो जो तेरी मर्जी वो करी।
मेरा नाम मंजीत है, मेरे गाँव का नाम मसन कोली है, मैं जिला पौड़ी गढ़वाल का हूँ। मैं रेडियो द्वारा संदेश भेज रहा हूँ अपने मम्मी पापा को जो कि ग्राम मसन कोली जिला पौड़ी गढ़वाल में रहते हैं। मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और अपना ध्यान रखना, मैं अगले महीने गांव आऊँगा और आप लोग मेरे लिए लड़की पसंद करके रखना क्योंकि मेरे पास छुट्टियाँ कम हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्ते और अपना ध्यान रखना।
मेरा नाम कल्पना रावत है, मैं ग्राम धारकोट में रहती हूँ और मैं अपनी बुआ को जिनका नाम दिल्ला देवी है वो लोनी बॉर्डर दिल्ली में रहते हैं उनके लिए संदेश देना चाहती हूँ। मेरी बुआ की लड़की की शादी है जिसका नाम रेखा है और रेखा दीदी को कहना चाहती हूँ सॉरी दीदी मैं आपकी शादी में नहीं आ सकती और मैं मम्मी पापा के पास आपके लिए गिफ्ट भेज रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, आप ना मम्मी पापा के पास ना अपनी शादी की फ़ोटो ज़रूर भेजना और जीजू के साथ भेजना, ठीक है? क्योंकि तब मुझे भी ऐसा नहीं लगेगा ना कि मैं आपकी शादी में नहीं आई थी।
तो दोस्तों ये थे आज के संदेश और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं।
नंबर है हमारा 9197176782।
दोस्तों अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप उस जानकारी को हमारे कार्यक्रम के जरिए बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए और अगर आप पहले से ही किसी ऐसे प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी हमें चिट्ठियों के जरिए भेज दीजिए।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज़ भणज और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com यानी shaherkior@gmail.com।
पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
और अब वक्त आ गया है दोस्तों आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
शहर की ओर जब चले शहर की ओर।